ஓம் சாந்தி. பாபா நே ஹம் சபி கே ஜீவன் மே யோக கா எக் பஹத் படா மஹத்வபூர்ண ஸ்தான் தியா ஹே. சாரோ ஹி சப்ஜெக்ட் மே பாபா நே ஜோ யோக கி மஹத்தா பதாயி ஹே ஹமே, கி யோக சே ஹி ஹமாரே சர்வ பூர்வ விகர்ம தக்த ஹோதே ஹே, ஔர் ஹம் ஆத்மா பாவன் பந்தி ஜாதி ஹே. ஜப் இத்னா மஹத்வபூர்ண விஷய ஹே, பரந்து வஹி கை பார் பஹத் டிஃபிகல்ட் மஹசூஸ் ஹோதா ஹே. ஜப்கி துனியா வாலோ கோ ஹம் கேதே ஹே கி யோக பஹத் சஹஜ ஹே, சரல் ஹே, தோ ஃபிர் ஹம் சபி கே லியே ஔர் விஷேஷ் உஸ்மே பி ஹம் சபி டீச்சர்ஸ் கே லியே தோ யே பஹத் ஹி சஹஜ விஷய ஹோனா சாஹியே, கி ஜஹா ஹம் அப்னி யோக கி சக்தி கே த்வாரா தூசரோ கோ பி ஆதார் தே சகே யா மதத் தே சகே சகாஷ் தே சகே. तो ये योग का सब्जेक्ट जितना हमारे मन के अंदर क्लियर होगा उतना ही हम किसी को भी इसकी क्लैरिटी दे सकेंगे. खास करके जब कहा कि योग से हमारे सर्व पूर्व विकर्म दग्ध होते हैं और आत्मा पावन बनती जाती है, तो वो कौन सा योग है? ஜப் ஹம் சபி யே அலக் அலக் அவஸ்தாவோ கே விஷய மே சுன்தே ஹே கி ஆத்ம அபிமானி ஸ்திதி க்யா ஹே, உஸ்கே பாத் அவ்யக்த ஸ்திதி க்யா ஹே, அஷரீரி அவஸ்தா க்யா ஹே ஔர் பீஜ ரூப அவஸ்தா க்யா ஹே. வைசே தோ யே ஏக் ஏக் ஸ்திதி கே உப்பர் ஏக் ஏக் க்ளாஸ் ஹோ ஜாதா ஹே, और इसीलिए एक ही घंटे के अंदर सारा समा लेना थोड़ा मुश्किल तो होता है. लेकिन जो विकर्म दग्ध होने की बात है वो बीज रूप स्थिति में है. आत्म अभिमाने स्थिति, देही अभिमाने स्थिति, अव्यक्त अवस्था में विकर्म दग्ध नहीं. और इसलिए जब उसको आरंभ करे तो जैसे बाबा हर रोज साकार मुरली में हम बच्चों को किसी न किसी तरह से ये प्रेरणा जरूर देते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव या आत्म अभिमानी भव. अक्सर जब हम ये बातें सुनते हैं तो कई लोग यही समझते हैं कि दोनों एक ही है. आप सभी क्या समझते हैं, एक है या अलग है? देही अभिमानी आत्म अभिमानी एक है या अलग है? हाँ, जो कहते हैं अलग अलग है हाथ खड़ा करें. अच्छा, मेजॉरिटी. और जो कहते एक ही है वो हाथ खड़ा करें. अच्छा है. वास्तव में ये दो शब्द है तो दो स्थिति है. तो देही अभिमानी कब है, आत्म अभिमानी कब है? तो जब हम कर्म में होते हैं, माना सारा दिन तो हम योग में नहीं बैठते हैं, कर्म योगी ज्यादा रहते हैं, तो जब कर्मेंद्रिय के द्वारा आत्मा कर्म कराती है, आत्मा मालिक बनकर के ये कर्मेंद्रिय का प्रयोग करती है, तो उस समय हम आत्म अभिमानी नहीं बन सकते हैं. लेकिन उस समय हम देही अभिमानी होते हैं कि देह का भान है और देह को मालिक बन करके हम प्रयोग कर रहे हैं. तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि उस समय हम आत्माभिमानी बन जाते हैं, है ना। लेकिन आत्मा मालिक बनकर के इस देह की कर्मेंद्रिय का प्रयोग करने वाली है, तो इसीलिए इसको देही अभिमानी कह देते हैं। तो देही अभिमानी स्थिति में क्या होता है और आत्माभिमानी स्थिति में क्या होता है, कि जब हम कर्म से निवृत्त हो जाए, अलग हो जाए, कर्म पूरा हो गया और जब हम योग में बैठते हैं, तो उस वक्त हम ये देह की स्मृति से भी अपने आप को परे ले जाते हैं। उस वक्त आत्म अभिमानी स्थिति में बैठते हैं। तो जब कर्म करना होता है तब देही अभिमानी होते हैं, जब कर्म से निवृत्त हो गए योग में बैठते हैं तो उस समय हम देह की कर्मेंद्रिय को समेट लेते हैं और आत्म स्वरूप में स्थित होकर के आत्म अभिमानी बनते हैं। आत्म अभिमानी का मतलब क्या, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसी को आत्म अभिमानी कहेंगे क्या? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, इसको आत्म अभिमानी कहेंगे? नहीं, आत्मा का कोई जाप नहीं करना है हमें। जैसे कोई व्यक्ति देह अभिमान में होता है, कैसे पता चलता है? किसी को देख करके आप तुरंत कमेंट कर देंगे, व्यक्ति बड़ा देह अभिमानी है। कैसे पता चला ये देह अभिमानी है? क्या होता है? कोई लेबल थोड़ी लगा होता है, फिर भी हमें पता चल जाता है कि ये बड़ा देह अभिमानी है। तो ऐसा क्या होता है कि जो हमें पता चल गया कि ये देह अभिमान में है? हाँ, उसके उसको नशा, उसने कुछ बोला भी नहीं है, वो बोलता भी नहीं है, फिर भी उसको देख करके आप कहेंगे बड़ा देह अभिमानी है। उसकी चाल और चलन में क्या होता है? अलग हो जाता है मनुष्य से। क्या होता है चाल चलन में? क्या होता है उसके हर बात के अंदर? एक फिजिकल देह का नशा प्रकट होता है, चाल चलन में रोब होगा, किसी से बातचीत करने का जो ढंग होगा, जैसे सामने वाले का इंसल्ट कर देगा वो, है ना, या किसी के प्रति ईर्ष्या आ जाएंगी, द्वेष आ जाएगा। तो जहां हमारी कोई भी कर्मेंद्रिय के द्वारा कोई ना कोई विकार प्रकट होते हैं, है ना, सूक्ष्म भी, चाहे बड़े बड़े विकार न हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न हो, लेकिन जो सूक्ष्म है, ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय स्वार्थ, कोई भी सूक्ष्म भी हमें दिखाई दे तो उस चीज को देख करके हम कहेंगे ये बड़ा देह अभिमान में है। तो आत्मा अभिमानी में क्या होगा कि आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप जब हम बनते हैं, योग में बैठते हैं, आत्म अभिमानी है, यानी आत्मा को सातों गुणों का शुद्ध नशा है। तो जब आत्मा को सातों गुणों का शुद्ध नशा इमर्ज रूप में होता है तो वो चेहरे से भाव से प्रकट होने लगते हैं, है ना। तो उसके चारों ओर ये ओरा, ये वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, ये प्रकंपन बाहर फैलते हैं और उसी में हमारा ये स्वरूप, आत्मा का स्वरूप होता है। तो उसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्वरूप। तो देही अभिमानी क्या है कि जब हम कर्म में आते हैं और देह को जैसे देह और देह की कर्मेंद्रिय को आत्मा मालिक बनकर के प्रयोग करती है, लेकिन उन कर्मेंद्रिय के द्वारा उस कर्म में सातों गुण प्रवाहित हो, वो देही अभिमानी है। शांति से कर्म करना, प्रेम से कर्म करना, जो कर्म करे बड़े प्यार से करे। जो बातचीत करते हैं तो बातचीत में भी वो नम्रता, निर्माणता, निरहंकारीपन, है ना। तो ये जो गुण है आत्मा के सात गुण और उसके सूक्ष्म जो वाइब्रेशन है, वो जब हमारे कर्म कर्मेंद्रिय से कर्म में प्रवाहित होते हैं या संबंधों में वो प्रवाहित होते हैं, व्यवहार में प्रवाहित होते हैं, तो उसको कहा जाता है देही अभिमानी स्वरूप। वो देही अभिमानी है जो दूसरे भी देख करके स्वतः ये कहे कि ये अल्लाह लोग है, ये अल्लाह लोग है। जो बाबा कई बार कहते कि दूसरे आपको देख करके कहे कि हाँ ये अल्लाह के बंदे ही हो सकते हैं। जैसे दुनिया के अंदर कोई बहुत मीठा बोलता हो, मृदुभाषी हो, तो उसको लोग क्या कहते हैं, या बहुत निर्माण हो अपने व्यवहार में तो लोग क्या कहते हैं, तो जैसे देवता है। बहुत धीमे बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, उसका चाल चलन चरित्र बहुत श्रेष्ठ होता है किसी, तो लोग क्या कहते हैं, ये तो जैसे देवता है। तो हमारे चाल चलन व्यवहार कर्म संबंध, इन सब बातों से जब आत्मा के सातों गुण प्रवाहित होते हैं, उसको देख करके लोग कहे ये अल्लाह लोग है, ये भगवान के बच्चे हैं, ये भगवान के बच्चे देखना है तो इनको देखो, ये है देही अभिमानी। और जो सारा दिन देही अभिमानी रहते हैं, तो जब हम योग में बैठते हैं तो मेहनत नहीं लगती है, तो सहज देह से न्यारा होना इजी हो जाता है, और आत्म स्वरूप में स्थित होना और आत्मा के वो सातों गुणों का ओरा जैसे विकसित हो रहा है, ये है आत्म अभिमानी। और जब इस अभ्यास में हम पक्के हो जाते हैं, इसीलिए दिनचर्या आधार है योग के लिए। अगर दिन भर में हम देह अभिमान में व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा रहते हैं, तो जब हम योग में बैठते हैं तो उस समय देह से न न्यारा हो सकते हैं, न हमारे मन के अंदर समर्थ संकल्प चल सकते हैं, न वो स्थिति का आत्म अभिमानी स्थिति का भी अनुभव नहीं कर पाते, बहुत डिफिकल्ट लगता है। योग में बैठेंगे लेकिन वही व्यर्थ संकल्प, दिन भर के जो कर्म के व्यर्थ कर्म व्यर्थ संकल्प से जो हमने कर्म किया, तो उसी का प्रभाव योग के समय भी दिखाई देता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, या व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्यूरिटी है। ये बाबा ने क्यों कहा कि व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्यूरिटी है, क्योंकि यही हमारे योग के सब्जेक्ट को बहुत डिफिकल्ट कर देता है। सहज योग में, योग में जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आता है, बहुत ज्यादा व्यर्थ चलेगा, और व्यर्थ चल चल करके जब थक जाएगा मन तो सो जाएगा, इसीलिए योग में नींद आती है। योग में जो आनंद आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वो नहीं। इससे तो समझते हैं कि हम मुरली पढ़े, किसी को कोर्स कराएं, या इससे तो कोई कर्मणा सेवा करे, वही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि योग तो लगता नहीं, वो स्थिति का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं हम जो करना चाहते हैं। तो दिनचर्या का आधार योग के समय बहुत बड़ा अनुभव कराता। कई बार आप लोग ने अनुभव किया होगा, मधुबन आते हैं सहज योग लग जाता है, सेंटर पर नहीं लग पाता है, क्योंकि कोई यहाँ आपकी दिनचर्या में सुबह से लेकर के ज्ञान योग की बातें चलती है, न व्यर्थ का कोई काम है, न व्यर्थ के कोई संकल्प चलते हैं। मधुबन में आते उमंग उत्साह में होते हैं, तो वो उमंग उत्साह वाली जो सारा दिन की स्थिति रहती है, तो योग में जब बैठते हैं तो भी वो सहज लग जाता है, क्योंकि लाइट रहे ना सारा दिन। इसीलिए तो यही स्थिति जो यहां अनुभव करते हैं वहां भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सारा दिन हम देही अभिमानी होकर कर्म करेंगे तो, अगर व्यर्थ संकल्प चलाते हुए अरे इतना काम करना पड़ रहा है, ये करना पड़, ये व्यर्थ संकल्प चला करके करते हैं, तो कभी भी आत्म अभिमानी स्थिति नहीं बन सकती। और अगर बेस ही नहीं है तो उड़ान भरना तो आगे असंभव हो जाता है। ये स्थिति जब हो जाती है तो शरीर से सहज डिटैच हो जाते हैं, तो अशरीरी, शरीर से सहज रीति से डिटैच हुए तो अव्यक्त स्थिति में जाना सहज हो जाता है। अव्यक्त स्थिति में जाने से पहले ये हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं, बाबा की मुरली में ये बात हम सभी ने सुनी है ना, कि इस शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर है, अंतवाहक शरीर जिसको कहते हैं, अंतवाहक शरीर, लाइट का, छाया का एक शरीर है ना, हर एक के अंदर है। वो आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर लेकर के इस शरीर में प्रवेश करती है, तो हम सभी के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये चोला है और अंदर में सूक्ष्म शरीर है। तो जब हम योग में बैठते हैं, अशरीरी होते हैं, अशरीरी होते माना ही वो सूक्ष्म शरीर का ये पंच तत्वों के शरीर से डिटैच हो जाना, अलग हो जाता है, और वो वाहन बनता है और वो वाहन बन करके उड़ता है, इस शरीर से अलग होता है। वो हमारा वाहन है जिसको कहा अंतवाहक शरीर। ये सूक्ष्म शरीर जो है वही वाहन बनता है कि जब ये फिजिकल पंच तत्वों की देह से बिल्कुल विस्मृत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और इस सूक्ष्म देह के द्वारा हम ऊपर उड़ते हैं और वतन में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में। और जब वतन में जाते हैं तो वतन में क्या करते हैं, जैसे ही हम वतन में ये सूक्ष्म शरीर से पहुंचते हैं तो वहां हम सभी का एक संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप है। ये सूक्ष्म स्वरूप उस शरीर में प्रवेश करता है जिसको कहा जाता अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, और उस फरिश्ते स्वरूप से हम बाबा के साथ में मिलन मनाते हैं। ये सूक्ष्म स्वरूप से नहीं मनाते हैं, समान बनना पड़ता है। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे वतन में आ जाओ, वतन में मिलन मनाओ। तो वतन में अगर बाप दादा से मिलन मनाना है तो सूक्ष्म स्वरूप से नहीं मना सकते हैं। तो हम सभी का संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ऊपर में है, ये स्वरूप उसमें जाकर प्रवेश करते हैं। जैसे ये शरीर में प्रवेश करते हैं ऐसे उस शरीर में ये सूक्ष्म स्वरूप जाकर के प्रवेश करता है, और तब बाबा के साथ हम फरिश्ता स्वरूप में अव्यक्त स्वरूप से मिलन मनाते हैं। कई बार आप सभी ने दादी गुलजार से सुना भी होगा कि दादी गुलजार जब जाती है ऊपर तो बाबा उनको सभा के सामने इमर्ज करता है। कई बार दादी के संदेश में हम सुनते हैं कि दादी देखती है कि बहुत बड़ी सभा है बाबा के सामने, अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े हैं या किसी और आकार में खड़े हैं, या आप सभी ने सुना है कि बाबा के साथ खड़े हैं, तो कभी भी अगर आप दादी से पूछेंगे कि आपने पहचाना वहां हम लोग थे, एक बार हमने दादी से पूछा था, दादी हम लोग थे वहां पर, आपने हम लोगों को देखा, तो दादी कहती है पहचान नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पहचान सकते हैं? जब हम लोग उस सभा में है तो दिखाई देते हैं, तो क्यों नहीं पहचान सकते हैं? तो दादी ने बहुत सुंदर कहा था, क्योंकि वहां बाबा जब इमर्ज करता है तो हरेक का संपूर्ण स्वरूप में इमर्ज करता है, और जब संपूर्ण स्वरूप में इमर्ज करता है तो वह संपूर्ण स्वरूप के फीचर्स जो है बहुत दिव्य होते हैं, इसलिए पहचान नहीं सकते। जैसे बाबा के सामने, साकार बाबा के सामने, आपने ये बात तो सुनी होंगी कि जब साकार बाबा के सामने एक बार एक बच्ची आई थी, छोटी 12 साल की बच्ची थी, तो बाबा ने उसको, बहुत इनोसेंट थी, तो बाबा ने उसको सहज भाव से कहा बच्ची वतन में जाएगी, बाबा से मिलेगी। तो उसको ये भी नहीं समझ था कि वतन में क्या होता है, तो बाबा ने उसको दृष्टि दिया और वो बच्ची वतन में चली गई। जब वतन में चली गई तो वतन में जैसे बाबा से मिल करके जब आई पहली बार, तो उसने बाबा को देखती रही, तो बाबा ने कहा क्या देखा वहां बच्ची, पूछा बाबा ने उसको, तो उसने कहा बाबा ऊपर भी एक बाबा था, आपके जैसा ही था, लेकिन वो बाबा जो है ना बहुत सुंदर लगता था, आप इतने सुंदर नहीं लगते हो, सीधा सीधा बाबा को बोल दिया उसने, क्योंकि उसको समझ नहीं थी इतनी। तो उस समय बड़ी दीदी बैठी थी, तो बड़ी दीदी ने कहा चुप, बाबा के सामने ऐसा नहीं बोलते हैं। तो बाबा ने कहा दीदी उसको रोको नहीं, मनमोहिनी दीदी को कहा उसको रोको नहीं, मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऊपर क्या है, क्योंकि संदेशिया मुझे स्पष्ट नहीं बताती है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ऊपर क्या है। फिर बाबा ने उसको पूछा, खोद खोद करके जैसे पूछा कि बच्ची ऊपर जो बाबा था और मैं, मेरे जैसा ही दिख रहा था? बोले हाँ, फीचर्स आपके जैसे ही थे, लेकिन वो बहुत चमकदार था, बहुत लाइट निकलती थी उसमें। तो बाबा ने तब समझा कि मेरा संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ऊपर है और ये पुरुषार्थी स्वरूप है, और ये पुरुषार्थी स्वरूप को उस संपूर्ण स्वरूप में जाकर के मिल जाना है। फिर बाबा ने पुरुषार्थ करना आरंभ किया, जो 4 बजे का अमृत वेला योग है, पहले नहीं होता था यज्ञ के अंदर, लेकिन जब ये रहस्य खुला उसके बाद बाबा ने खुद 4 बजे उठना आरंभ कर दिया और 4 बजे तपस्या शुरू कर दी कि ये स्वरूप उस स्वरूप में जाकर के मिल जाएगा। उसके बाद बाबा ने पुनः कुछ समय के बाद उस बच्ची को बुलाया और पूछा कि बच्ची अब जाओ पुनः देख के आओ कि उस बाबा में और मुझ में कितना अंतर है। जब वो बच्ची पुनः गई बाबा के पास, फिर आकर कहा बाबा अभी भी अंतर है। बाबा ने फिर और पुरुषार्थ किया, 2:30 बजे उठने का पुरुषार्थ किया और 2:30 बजे उठ करके योग करना शुरू कर दिया, और इतना गहन तपस्या करते थे बाबा के फिर कुछ समय के बाद जब उस बच्ची को पुनः बुलाया बाबा ने, बच्ची अब देख के आओ उस बाबा में और मुझ में कितना अंतर है, तब उसने आकर के कहा बाबा अब ना के बराबर है, अब आपके अंदर भी वही लाइट है, वही चमक है, आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है, और बाबा संपूर्णता को प्राप्त हो गए थे। और फिर थोड़े ही समय के बाद बाबा ने अपने साकार देह को त्याग करके ये स्वरूप जाकर उसमें समा गया। तो इसी तरह हम सभी जो भी ब्राह्मण बनता है, जो भी बाबा का बच्चा बनता है, हम सभी का भी एक संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ऊपर में है और ये पुरुषार्थी स्वरूप को जाकर उस स्वरूप में मर्ज होना है, समाना है। उसी के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि ये स्वरूप कब उस स्वरूप में जाकर के समाए, अव्यक्त स्वरूप में जाकर समाए। जो वतन में मिलन मनाने का जो काम है, जैसे दादियां जाती है, संदेश पुत्रियां जाती है, तो वो भी इस स्वरूप से मिलन नहीं मना सकती है। वो भी जाकर के उस संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता चोला धारण करती है जो बाबा मुरली में चलाता है, बहुत चमकीला होता है और इतना चमकीला स्वरूप वो होता है और उस ड्रेस को पहन करके फिर बाप दादा के सामने जाते हैं, नैन मुलाकात करते हैं। बाबा जब गले लगाता है तो ये स्वरूप को गले नहीं लगाता है, पुरुषार्थी स्वरूप को गले नहीं लगा रहा है, बाबा उस स्वरूप को गले लगाता है। और जब बाबा मिलन मनाता है बच्चों के साथ में, जो बातचीत करते हैं, तो वही स्वरूप जो होता है वो बाबा की मूवी को, क्योंकि वहां शब्द तो है नहीं, तो संदेश पुत्रियां कैसे संदेश को कैच करती है, तो जितनी उनकी बुद्धि की प्योरिटी होती है उतना उस एक्शन को, वो मूवी को कैच कर लेती है, वो वाइब्रेशंस को कैच करती है और तब वो आकर के संदेश सुनाती है। तो जैसे आप लोग 69 में जब बाबा ने साकार देह को त्याग किया था, उसके बाद 13 दिन तक बाबा को भोग लगा था और वो 13 संदेश अगर आप पढ़ेंगे, कभी भी अगर टाइम मिले आप वो 13 संदेश पढ़ना, बहुत सुंदर है। उसमें एक संदेश ऐसा है कि जिसमें वतन का पूरा वर्णन है कि वतन कैसा है। तो कहा कि वहां जैसे बादलों से ऊपर की दुनिया है, लेकिन जैसे चांदनी का प्रकाश फैला होता है, ऐसे चांदनी का प्रकाश फैला होता है और इतना चमकीला होता है, और वहां ये चमकीला ड्रेस पहन करके एकदम लाइट का ओरा चारों ओर एक प्रभा मंडल की तरह होता है, और तब हम जाकर के बाबा के सन्मुख खड़े होकर के या बाबा से नैन मुलाकात करते हैं, या बाबा से गले मिलते हैं, या बाबा से मिलन, मधुर मिलन मनाने का जो अनुभव होता है फरिश्ते स्वरूप का, वो उसी समय में होता है। लेकिन बाबा जैसे कई बार कहते हैं कि ये सूक्ष्म वतन का पार्ट भी संगम युग तक है, हमेशा तो नहीं है, सारा कल्प तो नहीं है, सिर्फ संगम युग का ये पार्ट है, इसीलिए ये खेल पाल है। बाबा हमेशा कहते हैं ये सूक्ष्म वतन का खेल पाल, तो ये खेल पाल भी बाबा ने बंद करवा दिया। क्यों बंद करवा दिया? क्योंकि बाबा कहे उसमें भी कभी कभी जब आत्मा उस स्वरूप में चली जाती है, जैसे हमने मन बुद्धि से उस स्वरूप में प्रवेश कर लिया, तो यहाँ हमारा इस स्वरूप के ऊपर कंट्रोल कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, अशरीरी हो जाते इसलिए। तो उसी समय में माया की प्रवेशता या इविल स्पिरिट की प्रवेशता होने की संभावना होती है, इसीलिए बाबा ने कहा कि आगे चल करके जब इतनी ताकत नहीं होगी, मन बुद्धि जब उस अशरीरी होकर के उस स्वरूप में चले जाएंगे तो ताकत खत्म हो जाती है, शरीर से कंट्रोल हमारा ना के बराबर हो जाता है, तो उस समय में वो इविल स्पिरिट देखती है कि खाली है तो प्रवेश करने की मार्जिन है, इसीलिए बाबा ने ये खेल पाल का पार्ट बंद कर दिया, ताकि हम प्रैक्टिकल योग की मेहनत से ही अपनी स्थिति बनाए। योग की मेहनत हमें करनी है और ये स्थिति का अनुभव करना है। तो इस देह में रह करके जितना हम उस स्थिति का अनुभव करेंगे तो ऐसा ही महसूस होगा जैसे प्रत्यक्ष में बाबा के साथ वो मिलन मना रहे, अव्यक्ति मिलन का अनुभव कर पाएंगे। तो ये बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि पुरुषार्थ करे, खेल पाल में न चले जाए, लेकिन ज्ञान की परिपक्वता के साथ, ज्ञान की परिपक्वता के साथ जब ये स्थिति का अनुभव करेंगे तो कभी भी माया की प्रवेशता या कोई भी आत्मा की प्रवेशता नहीं हो सकती है। इतनी पावर अंदर में रहेगी ये शरीर में भी, और ये पावरफुल स्थिति का अनुभव हम कर पाएंगे। लेकिन ये खेल पाल की स्थिति के कारण ही, जैसे बाबा कहते हैं कि इसमें विकर्म विनाश नहीं होता, मिलन का अनुभव है, विकर्म विनाश नहीं है। विकर्म विनाश के लिए तो बहुत पावरफुल स्थिति चाहिए, पावर वाली चाहिए। तो जब ये खेल पाल का समय भी थोड़ा समय चलता है, पूरा होता है, उसमें जो अनुभव करना चाहो आप, कि जैसे अव्यक्त स्थिति के अंदर जितना समय रहना चाहो, बाबा के पास में रहना चाहो, मिलन मनाना चाहो, कभी जैसे कोई सेवा के लिए जा रहे हैं तो बाबा का अवरदानी हाथ अपने मस्तक पर महसूस करो आप, और उस आशीर्वाद को लेकर के जब जाएंगे बाबा के पास में, तो जैसे आप वो आशीर्वाद बाबा के लेकर के आप उस सेवा में भी जाएंगे तो सेवा में भी सफलता का अनुभव करेंगे। और कोई भी कार्य करना हो तो उसमें भी अगर बाबा का ये आशीर्वाद का हाथ अपने ऊपर अनुभव करें तो बड़े से बड़े असंभव कार्य को भी संभव करने की शक्ति आ जाएगी। लेकिन ये पावर कोई कार्य करने के लिए है, या कभी जैसे महसूस करो, दादी जैसे कई बार अपना अनुभव सुनाती है वतन का, कि जैसे बाबा बहुत बड़े हॉल में ले जाते हैं जहां अलग अलग जैसे ये कुर्सियां होती है, ऐसे एक एक कुर्सियां होती है, उसके बदले के कमल आसन, और वो कमल आसन में विभिन्न लाइट्स निकलती है। ये अनुभव आपने कई बार सुना होगा कि दादी जब सुनाती है कि रंग बिरंगी लाइट्स निकलती है। तो वास्तव में जब हर एक योगी एक एक कमल के ऊपर बैठ जाता है, बाबा भी एक बहुत बड़े कमल के ऊपर बैठ करके जैसे योग की सकाश हर एक को देता है और उस कमल से विभिन्न प्रकार की लाइट्स निकलती है, तो ये लाइट्स कौन सी है, तो आत्मा के सातों गुणों की लाइट्स निकलती है, सात गुणों की जैसे सप्तरंगी लाइट्स निकलती है। ये जैसे ओरा का काम करता है, पूरे कमल को भी जैसे लाइटमय बना देता है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ये सारा वतन का विजुअलाइजेशन है। और जिस समय बाबा सकाश देता है, शक्ति देता है ना, वरदान देता है, आशीर्वाद देता है, ये सब वतन के लिए है। लेकिन फिर धीरे धीरे वहां से भी अलग होकर के हमें और अशरीरी होकर के वो सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ करके, अव्यक्त स्वरूप को भी छोड़ करके, फिर सिर्फ मैं आत्मा अशरीरी होकर के ऊपर जाती हूँ, परम धाम में जाती हूँ। और वहां जब जाते हैं तो परम धाम के विषय में भी आपने सुना है कि एक दिव्य प्रकाश का वो धाम है जहां लाल और सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है, जैसे नमः शाम के समय या एकदम सूर्योदय होने का समय जो होता है और लालिमा जो फैल जाती है, ऐसे लालिमा वाला एक वतन है वो, पूरी जहां दिव्य लालिमा छाई हुई है, बहुत सुंदर लाइट है। ऐसी दिव्य लालिमा वाले धाम के अंदर आप स्वयं को एक प्रकाशमय आत्मा के रूप में देखो अंतर चक्षु से, बस मैं सिर्फ एक आत्मा हूं, लाइट का पुंज हूं या प्रकाश का पुंज हूं, उस स्वरूप में देखना। और जितना उस स्वरूप को आप पकड़ के रख सकते हैं अपनी बुद्धि के अंतर चक्षु के द्वारा, जितना उसको पकड़ के रख सकते हैं, उस अनुभव में आप समाते जाएंगे, नींद नहीं आएंगे आप। इतना ही नहीं, लेकिन जब बाबा के सन्मुख जाते हैं, शिव बाबा सिर्फ लाइट का, हाँ, जैसे दिव्य लाइट का पुंज है, तेजोमय स्वरूप है, एकदम विशाल, माना लाइट कोई बहुत बड़ी है ये नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे सूर्य के चारों ओर जो उसका ओरा है, उसका प्रभा मंडल है, वो कितना गुना अधिक लगता है। तो सूर्य तो छोटा होता है, लेकिन उसका प्रभा मंडल कितना बड़ा होता है। इसी तरह बाबा भी प्रकाश पुंज, दिव्य तेजोमय, लेकिन उसका प्रभा मंडल इतना विशाल, और जैसे सुनहरी लाइट अंदर से निकल रही है, ऐसा बाबा का वो दिव्य स्वरूप आप अंतर चक्षु से देखो। और वो प्रभा मंडल आपको भी जैसे उस प्रभा मंडल, उस लाइट के अंदर जैसे ले रहा है, और जैसे बाबा की लाइट की किरणें जैसे भुजाएं बन करके आपका गले का हार बन रही है। ये विजुअलाइज करो आप, और शारीरिक स्थिति एकदम निराकारी स्वरूप, निराकारी स्वरूप में ही बाबा के साथ मिलन मनाते हुए, और उस मिलन में जैसे बाबा की किरणों की प्रकाश जैसे मिलती जाती है, और जैसे आत्मा सशक्त हो रही है, शक्तिशाली बन रही है, उस लाइट से जैसे एम्पावर्ड हो रही है। और उसी में एक समय आता है कि जब मैं एकदम बीज की तरह, जैसे बीज के अंदर सारा वृक्ष समाया हुआ है, ऐसे मैं आत्मा भी बीज हूँ, और मुझ में जैसे सारे 84 जन्म का जो पार्ट है वो समा जाता है, एकदम एसेंस, एसेंसफुल हो जाओ। और उस एसेंस में जब समा जाएंगे तो बाबा भी बीज और मैं भी बीज, और उस अवस्था में विकर्म दग्ध होते हैं। उस समय जैसे एक बाबा की जो किरण एक आती है, जो चिंगारी की तरह एक ज्वाला को प्रकट करती है, एक लाइट को प्रकट करती है, और ऐसा वो स्पार्क होता है, और उस स्पार्क से जिसको कहा जाता है ज्वाला स्वरूप स्थिति, एक ज्वाला प्रकट होती है। लेकिन जैसे दहकने वाली ज्वाला नहीं होती है, जलाने वाली ज्वाला नहीं होती है। जैसे आप सभी अगर ज्वाला जी गए हैं कभी, हिमाचल में ज्वाला जी मंदिर है ना, तो वहां पर जाएंगे तो ज्वाला देवी का मंदिर है, तो मंदिर में अंदर जाएंगे ना तो एक जगह आती है जहां पानी का कुंड है, पानी उबल रहा है, ऐसा लगता खौल रहा है पानी, ऐसा उबल रहा है एकदम, लेकिन अगर हाथ डालेंगे ना तो इतना ठंडा, बर्फ से भी ठंडा होगा, इतना ठंडा पानी है। तो ज्वाला स्वरूप स्थिति के लिए अंदर आत्मा इतनी शीतल होनी चाहिए, इतना शीतल स्वरूप, निर्संकल्प जिसको कहा जाए, कोई संकल्प नहीं, इतना शांत एकदम शीतल स्वरूप मेरा, और वो ज्वाला स्वरूप है। तो इसीलिए कहा वो दहकने वाला स्वरूप नहीं होता है, लेकिन इतना ही आत्मा निर्संकल्प शांत एकदम, और वो ज्वाला ऐसी प्रकट हो रही है, और उस ज्वाला में आत्मा के जितने भी विकर्म हैं वो दग्ध होते हैं, उस स्टेज में ही दग्ध होते हैं। बाकी आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप और शरीर स्वरूप, यहां तक विकर्म बनते नहीं है, लेकिन जो है वो जलते भी नहीं है, जलते सिर्फ इसी स्वरूप में है। और इस स्वरूप में आप जो संस्कार को जलाना चाहो उस संस्कार को भी जला सकते हैं। इस स्वरूप में, वो ज्वाला स्वरूप में, जो स्वरूप आप अपना बनाना चाहो, मानो आप ये स्वरूप इमर्ज करना चाहो कि मैं महान पवित्र आत्मा हूं, तो जैसे आत्मा के अंदर से सारे दाग जैसे खत्म हो रहे हैं, और मैं एकदम पवित्र स्वरूप जैसे चमकता हुआ दिव्य स्वरूप, मेरा भी कोई दाग नहीं उसमें, ऐसा स्वरूप आप इमर्ज करके देखो, और वो स्वरूप जो होगा ना, वो स्वरूप अंतिम समय अनेकों के लिए साक्षात्कार का स्वरूप बनेगा। उस समय मान लो कि आपके अंदर कोई संस्कार है कि भाई गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो उस समय ये नहीं कि गुस्सा का संस्कार मेरा जल रहा है, ये नहीं, लेकिन अपने शांत स्वरूप को इमर्ज करो, हमेशा पॉजिटिव संकल्प लेने का। भाई गुस्सा वाला स्वरूप नहीं होना चाहिए, ये नहीं शब्द नहीं, बुद्धि समझती नहीं है, तो वो गुस्से वाले स्वरूप को ही प्रकाश मिल रही है, अंदर से शक्ति मिल रही है। इसीलिए कई बार कई लोग योग करने के बाद कहते हैं हम कितना गुस्से को जलाने का प्रयास, लेकिन ये संस्कार जलता ही नहीं है। क्यों नहीं जलता? क्योंकि वो गुस्से के संस्कार को इमर्ज कर रहे हैं, तो उस संस्कार को, क्योंकि इस स्वरूप में जैसे बाबा की शक्ति मिल रही है, जब शक्ति मिल रही है तो गुस्से को शक्ति मिल रही है, तो वो गुस्से वाला संस्कार बढ़ रहा है। या कोई भी कमजोरी को आप उस समय इमर्ज करेंगे तो उसको बाबा की शक्ति मिल रही है। जैसे सूर्य की रोशनी को इकट्ठा करो लेंस से, तो नीचे कागज रखा हुआ जलने लगता है, माना कितनी पावरफुल है। ऐसे बाबा से भी पावरफुल लाइट मिल रही है, लेकिन उस समय कोई भी अगर नेगेटिव संस्कार के विषय में आप सोचेंगे तो उसको शक्ति मिलती है, और इसीलिए वो संस्कार और पावरफुल हो जाता है। इसलिए उसका ऑपोजिट लेने का, कि अगर मुझे गुस्से के संस्कार को खत्म करना है तो मैं महान शीतला देवी हूं, शीतलता की मूर्ति हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो शांति को जैसे सकाश मिल रही है, बाबा की जो पावर मिल रही है वो शांत स्वरूप को मिल रही है, तो जितना वो शांत स्वरूप इमर्ज होगा तो वो गुस्से वाला स्वरूप अपने आप खत्म हो जाना है। तो ऑपोजिट स्वरूप को इमर्ज करो, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव स्वरूप को इमर्ज करो, उससे उसको बाबा की शक्ति मिलती है, और तब आत्मा के अंदर जैसे वो संस्कार खत्म हो रहा है, और आपका जो स्वरूप आपने देख, आप जो स्वरूप अपना बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिस स्वरूप में आप अपने आप को देखना चाहते, वो स्वरूप उभरने लगेगा। और वो स्वरूप जब उभरने लगता है तो जो आपकी कमी कमजोरी वाला स्वरूप है वो जल करके खत्म हो जाता है। माना बाबा की सकाश मिलती है, लेकिन मेरा वो ज्वाला स्वरूप या बीज रूप स्वरूप जो है उस संस्कार को खत्म कर देता है, या जिसको कहे के 5000 साल तक उसको मर्ज कर लेता है, खुद में ही मर्ज कर लेता है, और अपना दिव्य स्वरूप इमर्ज हो जाता है, जो ओरिजिनल स्वरूप है वो इमर्ज हो जाता है, बाप समान स्वरूप जो है वो इमर्ज होता है। तो वो स्वरूप को इमर्ज करना है मुझे, और उसको सकाश मिले, बाबा की जो लाइट मिले, किरणें मिले, जो बाबा की शक्ति मिले, वो उस स्वरूप को मिल रही है, तो सोचो आप वो स्वरूप कितना पावरफुल हो जाएगा, कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि कितनी देर आप योग में बैठ गए, इतना सुंदर अनुभव, निर्संकल्प स्थिति का अनुभव, कोई संकल्प विकल्प नहीं आता है उस स्वरूप में जलने का जैसे, और दिव्यकरण होने का जैसे एहसास, आत्मा का दिव्यकरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, और उस जो दिव्य स्वरूप है वो इमर्ज होता है, और फिर जब आप वहां से वापस भी आएंगे तो जैसे वो प्रवाह में रहेंगे, जिस तरह बाबा जब आता है ऊपर से तो आते ही बोलना नहीं चालू कर देता है, उस प्रवाह में रहता है, और वो प्रवाह सारे डायमंड हॉल के अंदर भी फैल जाता है, और इतना वो प्रवाह फैल जाता है कि हर कोई महसूस करता है उस प्रवाह में जैसे, कि हाँ बाबा के साथ जैसे मेरा मिलन का अनुभव हुआ, वो प्रवाह ऐसा होता है कि जो भी उस समय आत्मस्थिति में बैठा होता है, या अशरीरीपन की स्थिति में बैठा होता है, वो उस प्रवाह में जैसे बह जाता है और उस अनुभव को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी सभा में होते हुए भी उस अनुभव को महसूस कर सकता है। तो इसी तरह जब आप ऊपर से वापस इस नीचे भी आएंगे तो भी वो प्रवाह आपका बना रहेगा काफी समय तक। आप खुद महसूस कर, आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी, तुरंत आवाज में आने की इच्छा नहीं होगी। अगर कोई पूछता भी है तो भी जैसे आप इशारे से बात करके उस बात को हाँ या ना में जवाब दे करके पूरा कर देंगे, लेकिन काफी देर तक वो प्रवाह आपका बना रहेगा। और तब आपको लगेगा कि आज का योग जो था ना इतना यूनिक था, और ऐसा हल्कापन महसूस होगा उसके बाद, जैसे शरीर से भी हल्के हो गए हैं, जैसे वेटलेस है, चल रहे हैं लेकिन जैसे वजन ही नहीं है, ऐसा महसूस करेंगे। तो ये है बीज स्वरूप स्थिति, है ना? ठीक है, तो अभी बैठे चले हा? तो पहले आत्माभिमानी से, फिर आगे जाएंगे वतन का अनुभव करेंगे, वतन में बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, वो बड़े हॉल में बाबा के साथ जाएंगे, सभी बैठेंगे कमल आसन के ऊपर। हर एक महसूस करना कि हर एक का इंडिविजुअल वो कमल आसन है, उस पर बैठे हैं और बाबा से मिलन मना रहे हैं। जो मन का भाव आप बाबा के सामने रखना चाहे रख सकते हैं, ऐसे बैठो जो टच न हो एक दूसरे को टच न हो, इस तरह से बैठे। और शारीरिक एकाग्रता जितनी होगी उतनी अंदर की एकाग्रता को भी ला सकेंगे।
हमें।